ओम नमो भगवते
वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं च श्रीरूपां सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाचाकल्पतरूपेश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी रथ यात्रा नजदीक आ रही है तो भक्त लोग चर्चा करते हैं भगवान जगन्नाथ के बारे में, जगन्नाथ की महिमा आदि का वर्णन करने का प्रयास करते हैं। और वास्तव में ये बहुत महत्वपूर्ण भक्ति का अंग है। प्रहलाद महाराज कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो भगवत भक्ति खड़ी रहती है श्रवणम के ऊपर। तो जो हम श्रवण करेंगे वैसे ही हम बनेंगे। तो रथ यात्रा का जो मूड है वो धीरे धीरे विकसित होता है जब हम उससे पूर्व भगवान जगन्नाथ के बारे में सुनते हैं, रथ यात्रा महोत्सव के बारे में सुनते हैं। तो हम फिर रथ यात्रा को सही एटीट्यूड से या मनोवृत्ति से अप्रोच कर पाते हैं। और वास्तव में ये जो भगवान जगन्नाथ है वे श्रवणम के विग्रह है। अब देखो भगवान कृष्ण का खुद का परिवर्तन हो जाता है। कैसे हो जाता है? सुनकर। वही कृष्ण श्रवण करके जगन्नाथ बनते हैं तो क्यों नहीं सर्वसाधारण जीव यदि भगवान कृष्ण के बारे में सुनेगा तो उसका भौतिक शरीर से क्या बन सकता है? आध्यात्मिक शरीर में परिवर्तन हो सकता है। तो इसलिए श्रवणम हमारा मेन फूड है, मेन जो भोजन है वो सुनना है। तो जैसा जैसे मैंने शुरुआत में कहा जो जो हम रेगुलर सुनते हैं उसी प्रकार की भावनाएं या चेतना हमारी विकसित होती है। अरे उसी प्रकार से हम कार्य करने लगते हैं, उसी प्रकार से सोचने लगते हैं, उसी प्रकार से हमारे जीवन के लक्ष्य को हम बनाते हैं। इसलिए बहुत बहुत सावधानी के साथ हमें सोचना चाहिए कि मुझे क्या सुनना चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए। जैसे हम वो छोटी सी कथा सुनते हैं, प्रभुपाद ने भी दोहराई थी। एक छोटा सा बालक था, वो स्कूल्स में जाता था। स्कूल में जाके इतना बदमाश था, कुछ ना कुछ रोज चोरी करके आता था। तो घर में माँ देखते, अरे बच्चा है चोरी कर रहा है, ठीक है चलेगा। तो घर में माँ उसकी प्रशंसा करती थी, बेटा बहुत अच्छा। तो ऐसे बेटा स्कूल जाता था तो किसी की पेंसिल लेके आता था, धीरे धीरे किसी का बैग लेके आना लगा, धीरे धीरे ऐसी प्रोग्रेस होते गया, जैसे हम भक्ति में भी प्रोग्रेस करते हैं। तो वैसे ही वो भी ऐसे उन्नति कर रहा था चोरी करने में, लेकिन घर में जो माँ है वो उसके साथ बड़ा सदव्यवहार करती थी। लेकिन एक ऐसा समय आया, वो बालक अभी बालक नहीं रहा, वो युवा बन गया था, और उसने अभी छोटी मोटी चोरियां करना नहीं, बड़े बड़े स्थानों में हाथ मारना शुरू किया था। और जब उसने बहुत बड़ी चोरी की तो स्वाभाविक है चोर एक दिन पकड़ा जाता है। तो पुलिस ने उनको पकड़ा और दंड, जब दंड उसे देने फाइनल हुआ कि उसको मृत्यु दंड दिया जाए। कौन सा दंड? कई प्रकार के दंड है, तो मृत्यु दंड दिया जाए। उसको पूछा, पिछोर सोचा दया आ जाती है, कोई मरने वाला है तो चाहे कितना ही क्रूर हृदय क्यों ना हो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर होता है। दया आ गई कि ठीक है अभी इतनी चोरी कर ली है, इसको पूछ लेते हैं आखिरी ख्वाहिश क्या है, क्या है आपकी आखिरी इच्छा। जैसे एक व्यक्ति कोर्ट में था, न्यायाधीश ने उसको मृत्यु दंड की शिक्षा दी और उसको पूछा बताइए आप क्या क्या आपकी इच्छा है जो पूरी करे। तो उसने कहा मुझे इंटरनेट एक्सेस चाहिए। क्या चाहिए? इंटरनेट की सुविधा थोड़े समय के लिए चाहिए। तो जज ने पूछा अरे मरने वाला है फिर भी इंटरनेट चाहिए? उसने कहा ताकि मैं फेसबुक पर अपलोड करूं मेरा स्टेटस कि अभी मैं क्या हो डेड हो। तो इस प्रकार से इसको भी पूछा इस युवक को कि आपकी क्या फाइनल इच्छा है। तो उसने कहा कि मैं अपनी माँ को देखना चाहता हूँ, माँ को मिलना चाहता हूँ फाइनली, तो माँ से बात करना चाहता हूँ प्राइवेटली। तो फिर लाया गया उसकी माँ को और माँ आ गई नजदीक। तो अभी बेटे ने कहा माँ अब कान थोड़ा मेरे पास करो, थोड़ा सा कुछ बोलना है आपके कान में। और जैसे माँ ने अपना कान अपने उस पुत्र की ओर किया तो बच्चे ने उस युवक ने क्या किया अपनी माँ का कान काट लिया, खा लिया। तो चिल्लाने लगी, रोने लगी, तड़पने लगी। तो उन्होंने कहा यही है, इसी कारण से शुरुआत से आप मुझे सुनाते ठीक कि मैं उचित हूं या अनुचित हूं, तो अभी मरना नहीं पड़ता मुझे इस प्रकार से। समस्या क्या है इसके कारण हुई है, तुमने मुझे ठीक से संदेश उपदेश शिक्षा सुनाई नहीं, आप मुझे केवल प्रशंसा करती जा रही थी। तो उसी प्रकार से भक्तिमय जीवन में भी सुनना सबसे महत्वपूर्ण है। परीक्षित महाराज के जीवन में देखते हैं मृत्यु सामने खड़ी है सांप के रूप में। किस रूप में? हाँ, हमारे सामने प्रसाद के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। हमारे सामने कौन खड़ा है सदैव दिखता है? वहां प्रसाद। और यहां परीक्षित महाराज को मृत्यु दिखाई दे रही है सामने, और भी एक तक्षक जिसको पंख है, उड़ने वाला सांप। सांप तो है ही, लेकिन कैसा सांप? उड़ने वाला। और वो आकर और इतना सबसे पावरफुल सर्प था और इंद्र का बड़ा क्लोज फ्रेंड था। तब सोचो ऐसे जो राजा धीराज स्वर्गपति उसका फ्रेंड कितना पावरफुल होगा। फ्रेंडशिप थोड़ी ऊंच नीच से एक लेवल के व्यक्ति के साथ होती है। तो उसी प्रकार से जब परीक्षित महाराज ने देखा कि मृत्यु तो उनके सामने खड़ी है, तो उन्होंने कुछ सोचा नहीं, उन्होंने क्या किया, शरणम प्रपद्ये, शरण स्वीकार कर ली। किसकी शरण स्वीकार कर ली, दो चीजों की। परीक्षित महाराज कहते हैं वो पिक लिया तुरंत अपने राजमहल आदि का त्याग करके गंगा के किनारे जाते हैं और वहां भक्तों की शरण और गंगा की शरण ग्रहण करते हैं और फिर अनाउंस करते हैं जोर से कि अभी मुझे किसी का भय नहीं है, अभी मैं इस तक्षक से भी नहीं डरता हूं। हे वैष्णवगण, गायतः विष्णु गाथा, हे भक्तों, मैंने आपकी शरण ग्रहण की है और आप क्या करो, विष्णु की जो गाथा है, विष्णु की जो महिमा है, उसका गान करो, क्योंकि मैं उस परम औषधि को सुनना चाहता हूं। तो कई सारी औषधियां हो सकती हैं, लेकिन भागवतम आचार्यगण एक औषधि को कहते हैं परम औषधि, और वो कौन सी है, कृष्ण कथामृत, भगवान के बारे में 24 घंटे सुनना। परीक्षित महाराज ने किसी और चीज उसने उन्होंने नहीं सोचा, चलो अभी थोड़ा सा यात्रा में जाता हूं, कई स्थानों में भ्रमण करके आता हूं, नहीं, सबसे पावरफुल, सबसे सरल एक विधि को उन्होंने चूज किया और जो प्रैक्टिकल है, और वास्तव में देखा जाए कलयुग की शुरुआत में ही यह घटना घटित हुई है। हाँ, तो कलयुग के जीवों के लिए इससे बढ़कर और क्या महत्वपूर्ण शिक्षा हो सकती है कि आपने कर्ण रंध्रों के द्वारा भगवान के महान भक्तों के मुखारविंद से निकली हुई जो कृष्ण की गाथा है उसको हृदय में ले जाना, क्योंकि भगवान के मुख से, भक्तों के मुख से डायरेक्ट सुनना बहुत पावरफुल है ऑडियो सुनने से। क्यों, क्योंकि जब भगवान के महान जो भक्त होते हैं वो कृष्ण कथा का वर्णन करते हैं, भागवतम में वर्णन आया है कि वो जो कृष्ण कथा है वास्तव में भगवान के चरण कमल से निकलती है, और चरण कमल से उनके मुख से फिर भगवान के चरण कमलों में लगा हुआ जो मकरंद है, या फिर जो क्या कह सकते हैं चंदन वगैरह आदि है, उसका जो प्रभाव है उनके मुख से निकलता है और श्रोता के हृदय में प्रवेश करता है और वो शुद्ध करता है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा मेरा वॉइस मेरी एनर्जी है, मैं नहीं हूं। तो उस प्रकार से जब भी हमें मौका मिलता है उन्नत भक्तों के द्वारा श्रवण करने का, हमें डायरेक्ट सुनना चाहिए। तो कई बार हम आलसी होते हैं, कहते अरे चलो प्रभु जी आप रिकॉर्ड करके ले आ जाना, बाद में सुन सकता हूं, बल्कि टाइम होता है हमारे पास, तो ये बाद में रह जाएंगे, हम मृत्यु भी आ जाएंगे और कहेंगे बाद में सुनेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए कलयुग की शुरुआत में ही ये श्रवणम की ग्लोरी इसको स्थापित किया है स्वयं परम भगवान कृष्ण ने शुकदेव गोस्वामी के माध्यम से, और इसी कारण से इस महिमा को सुनने के लिए भगवान हमेशा छुट्टी लेते हैं। जैसे हम अभी रिसेंटली रंगनाथ में थे, साउथ इंडिया गए थे 15 दिन के लिए, तो श्रीरंगम में 2-3 दिन बिताए, बहुत अमेजिंग प्लेस है। तो वहां भगवान की एक विग्रह है रंगनाथ, रंगनाथ क्या नाम है उनका, रंगनाथ। तो रंगनाथ मीन्स उनको रंगनाथ भगवान अनंत शेष पर लेटे हुए हैं, उनका बेड क्या है, सांप का बेड है। आपको कहा जाए प्रभु जी आज आपको आपके लेटने की व्यवस्था की है हमने, आपके बेडरूम में सांप ही सांप है, आप दूर से प्रणाम करेंगे। वहां भगवान रंगनाथ लेटे हुए हैं, और वो भगवान कैसे लेटे हुए हैं, आपने एक हाथ को पिलो बनाया है, सोचो आइडिया लेके नहीं, हम पिलो के बिना तकिया के बिना नींद नहीं आती, अरे भगवान ने नेचुरल कई चीजें दी है, एक तो ये हाथ दिया, इतना अच्छा तकिया, हम दुखी स्वयं है, हम दूसरी चीजों पर जितना हम निर्भर रहेंगे उतने ही हम दुखी होंगे। इसलिए निर्भर किस पे रहना है? कृष्ण और भक्तों की। इसलिए कहते हैं भक्तों की सहायता से भगवान पर निर्भर रहना, हम भक्तों पर ही निर्भर रहते हैं, लेकिन भक्तों की हेल्प से, डिवोटीज की हेल्प से हम भगवान पर निर्भर रहे, और वो एक शरणागति का लक्षण है। तो भगवान वहां ऐसे सोते हैं, सोते हैं लेकिन देखते हैं पूरब की ओर नहीं, हम वहां दक्षिण की ओर देखते हैं, वहां श्रीलंका की ओर देखते हैं। कहां देखते हैं? श्रीलंका की ओर देखते हैं। क्यों देखते होंगे? क्योंकि उनका वहां एक डिवोटी निवास करता है, और वो है विभीषण। कौन? विभीषण। तो विभीषण से भगवान को बहुत प्रेम है। क्यों प्रेम है? क्योंकि इतने कठिन स्थिति में रहते हुए भी उन्होंने कभी भगवान का नाम कीर्तन, भगवान के गुणों को सुनना, भगवान की कथाओं का वर्णन करना कभी छोड़ा नहीं। अब सोचो रावण के साथ आपको रहना पड़े, कौन से प्रभु जी? रावण प्रभु। हम भी कई बार भक्तों को कहते हैं भक्त हिरण्यकश्यप की जैसा ही है। तो ऐसे रावण के साथ तो हम तो बहुत भाग्यशाली हैं, हम प्रहलाद महाराज जैसे हिरण्यकश्यप के घर में रहने का हमें मौका नहीं मिला है, या रावण के साथ नहीं, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इतनी सुव्यवस्था है। फिर भी न अनुराग, महाप्रभु कहते इतना दिया कृष्ण आपने लेकिन मेरा कोई अनुराग नहीं है। तो ऐसे विभीषण वहां निवास करते हैं और सदैव भगवान का गान करते हैं। तो वह प्रीचर है, सबसे बड़े प्रीचर कौन है? विभीषण। आसुरों के राज्य में रहते हुए भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का प्रचार करना, उन्होंने सोचा ये आसुर लोग कैसे इनका उद्धार होगा। हमेशा सोचते, प्रभुपाद भी तो गए थे बावरी स्ट्रीट में, वो सारे आसुरी प्रवृत्ति के लोग ही तो रह रहे थे, तो यहाँ इन्होंने सोचा कैसे इनका उद्धार होगा। तो उन्होंने सोचा चलो क्या करता, उन्होंने दीवारों में क्या कर दिया, लिख दिया। क्या लिखा? राम राम राम, बोलिए सारे दीवारों में राम नाम अंकित कर दिया। किसी का घर देखा है आज अपने आजकल? हाँ, हम सोचते भगवान के नामों का स्मरण करते रहना चाहिए, लेकिन मेरे घर में कोई ऐसी वैसी सब ठीक ठाक रहना चाहिए, प्रॉपरली फ्रेम्ड होने चाहिए फोटोज। भगवान का नाम किसी के घर में लिखा हुआ नजर नहीं आता, फोटोज नजर आते जरूर, लेकिन यहाँ पर विभीषण ने सब जगह भगवान के नाम को लिखा, और जो भी आता था वो क्या करता था? कलयुग के धर्म को पढ़ता था, राम नाम। फिर एक दिन प्रभु जी आ गए, कौन से? रावण जी आ गए विभीषण के घर। भाई है तो आना जाना लगे रहता है, आया और देखा ये क्या है। घुसते ही, प्रवेश करते ही सबसे पहला किसका स्मरण हो गया? रावण को। हाँ, मतलब हमारा ऐसा घर, हमारी हर चीज ऐसी इस प्रकार से हमें मैनेज करनी चाहिए कि हम खुद घुसेंगे तो हमें भगवान का सबसे पहले स्मरण हो जाना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहते थे तिलक हम लगाते हैं, बाहर निकलते तिलक लगाकर, वैसे तो हम शर्माते हैं। प्रभुपाद कहते बीड़ी मुंह में पकड़ के, सिगरेट मुंह में पकड़ेंगे शर्म नहीं आती, धुआं फेंकेंगे सबके ऊपर तब शर्म नहीं है, छोटे छोटे वस्त्र पहनेंगे तब शर्म नहीं है, लेकिन जब तिलक लगाने की बात आती है तब क्या है? शर्माते हैं। जब तिलक लगाकर हम निकलते हैं तो लोगों को वास्तव में हम सुकृति दान करते हैं, उनको किसका स्मरण होता है? कृष्ण का। तो ऐसे रावण जी भी आ गए और उन्होंने देखा, उनको भगवान राम का स्मरण हो आया, और फिर गुस्सा हो गए, आग बबूला हो गए, उन्होंने अपनी ऐसे कर लिया और फिर कहा क्या है ये हरकत, मेरे राज्य में रहकर मेरे घर का भोजन खाते हो लेकिन किसका गुण गाते हो? भगवान राम का। तो उन्होंने कहा ये क्या है? तो उन्होंने कहा नहीं भ्राता श्री, आपके प्रति मेरा प्रेम बहुत अधिक है, आपके प्रति नहीं, आपसे संबंधित जो भी वस्तुएं हैं, तदीय वस्तु जैसे भगवान से प्रेम करना मीन्स केवल भगवान से नहीं, उनके संबंधित सबसे प्रेम हो जाना चाहिए। तुलसी, डिवोटीज, गंगा, धाम, तो वास्तव में वो भक्ति है। तो उन्होंने कहा, भ्राता श्री, आपसे ही प्रेम नहीं है बल्कि आपसे संबंधित जो भी है उनसे भी प्रेम है, और विशेष रूप से आपकी जो पत्नी है, मन, क्या नाम था, मंदोदरी। तो ये जो दिख रहा है ना आपको सारे दीवारों में लिखा हुआ राम राम, ये राम का नाम नहीं है इसमें, तो वास्तव में आप और भाभी जी छुपे हुए हैं। सबसे पहले रा है तो वो किसका रा है, रावण का रा है, और जो म है वो किसका म है, मंदोदरी का म है। तो इस प्रकार से नित्य विभीषण लगे रहते हैं। तो हम भी चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, हमारा घर हो, कार हो, रूम हो, कुछ भी हो, वहां क्या स्मरण हो जाना चाहिए, भगवान कृष्ण का। इस प्रकार से हमें अरेंजमेंट करनी चाहिए। तो वहां रंगनाथ जी देखते हैं भक्त की ओर, सोचो भगवान का कितना प्रेम है। इसलिए तो जगन्नाथ जी निकलते रथ के ऊपर, किसको देखने के लिए, डिवोटीज को देखने के लिए। भगवान को सबसे अधिक आनंद होता है भक्तों को देखने से, और दूसरा है फिर जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए। लेकिन सर्वप्रथम भगवान की आंखें भीड़ में किसको सर्च करती है, तो अपने प्रेमी भक्त के लिए। कौन भक्त मेरी सेवा के लिए तत्पर है, उसको ढूंढने में भगवान की आंखें लगी रहती हैं। और ये आंखें कैसी हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है, विशाल हो जाती है। जैसे जैसे भगवान से प्रेम करने वाले भक्त को भगवान देखते हैं, तो जगन्नाथ की आंखें द्विगुणित हो जाती है, बढ़ती है। तो ऐसे भगवान रंगनाथ भी वहां सोते रहते हैं, एक हाथ तो पीलो है, तकिया बना लिया, और दूसरा हाथ ऐसे अपने घुटने, सोते तो पाव ऐसे लंबे तो घुटने की ओर कर दिया, ऐसे कर दिया। और उससे क्या भगवान सिखाते हैं दर्शन करने वालों को, कि मेरे क्या करो, मेरे चरणों की शरण लो। किसकी शरण लो, चरणों की शरण लो। परम पाद श्री वैष्णव संप्रदाय में सबसे श्रेष्ठ उपलब्धि है कि भगवान के चरण कमल। कुछ बनना है हमें तो भगवान के चरणों का सेवक बनना है। तो ऐसे वहां भगवान सोते रहते हैं, लेकिन एक दिन क्या हो गया, एक दिन उनके एक महान भक्त जिनका नाम था नाथ मुनि, वो नम्म अलवर, एक अलवर डिवोटी है, उनके प्रार्थनाओं पर प्रवचन देना शुरू किए। और वो प्रवचन चला कितने महीने, एक साल। कितना? तो भगवान रंगनाथ ने देखा कि मेरा प्रिय डिवोटी, प्रिय भक्त मेरे गुणों का गान कर रहा हूं, मैं सो रहा हूं, वह कथा हो रही है और मैं यहां क्या कर रहा हूं, सो रहा हूं। उनको बहुत गुस्सा आ गया भगवान को अपने आप पर। तो हमें, हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम स्ट्रिक्ट होते हैं दूसरों के लिए, है ना। सबसे अधिक स्ट्रिक्ट होना है तो किसके लिए हो जाओ, खुद के लिए। खुद के लिए स्ट्रिक्ट हो जाओ, दूसरों के लिए नहीं। तो भगवान रंगनाथ को, भगवान लेटे हुए थे, उन्होंने कहा ये क्या है, भगवान की भागवत कथा हो रही है, भागवतम क्लास चल रही है, और मैं वहां रूम में लेटा हुआ हूं। तो उन्होंने कहा नहीं, उठो, और अकेले नहीं, उन्होंने कहा मेरी पत्नी कहाँ है। भक्ति कैसे होनी चाहिए, साथ साथ होनी चाहिए। भगवान ने देखा उनकी पत्नी, इनका नाम रंगनाथ है और उनका नाम रंगनायकी। क्या नाम है, क्या अमेजिंग है, ब्यूटीफुल। तो रंगनायकी जो उनकी पत्नी, जिनको जो लक्ष्मी देवी है, उनका वो नाम है। लक्ष्मी के अलग अलग नाम होते हैं। तो उन्होंने कहा लक्ष्मी चलो हम मिलकर अभी कृष्ण कथा सुनेंगे। तो भगवान उठे विष्णु, और दोनों अपने भक्त के सामने बैठ गए। ऐसा वर्णन आता है कि सारे अपॉइंटमेंट्स जो भी थे एक साल के लिए कैंसल। कितने समय के लिए? सोचो आधा घंटे मोबाइल से अलग होना कितना विरल होता है। भागवतम क्लास में बैठना भी 50 बार तो मोबाइल पे देखना, टाइम क्या हुआ, मैसेज तो नहीं आया, व्हाट्सएप तो नहीं, फेसबुक तो नहीं, मेल तो नहीं। तो वहां भगवान ने कोई अपॉइंटमेंट नहीं रखी। सोचो भगवान को देखने के लिए मिलने के लिए कितने लोग आते हैं। उन्होंने कहा एक साल तक कुछ नहीं, बस मुझे भक्तों के मुख से क्या करना है, सुनना है, सुनना है, सुनना है। तो इस प्रकार से भगवान भी बल्कि वहां 322 दिन फेस्टिवल्स होते हैं। कितने दिन? 322। साल में कितने दिन होते हैं? 65। तो सब इसलिए उसको वैकुंठ कहते हैं। भगवान ये वैकुंठाधिपति है, और वैकुंठ का मतलब थर्ड कैंटो में वर्णन आया है। वैकुंठ का दूसरा नाम है अखंडित उत्सव। क्या नाम है? अखंडित, जहां उत्सवों का खंडन नहीं है, फेस्टिवल्स का एंड नहीं है, जहां वो वैकुंठ है। इसलिए हमारे जीवन में जब उत्सव होते हैं तो हम उत्साहित रहते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। फेस्टिवल्स उत्सव कम हो जाते हैं तो हम ढीले पड़ते हैं। इसलिए क्या है, आविर्भाव आ गया, तिरोभाव आ गया, कीर्तन मेला आ गया, गौर पूर्णिमा आ गई, रथ यात्रा आ गई, और क्या आता है, एकादशी आ गई, ये यात्रा आ गई, झूलन यात्रा आ गई, कार्तिक आ गया, कितना है, पूरा साल ही भरा हुआ है उत्सवों से। ये सबको हटा दो तो क्या होगा हमारे साथ, बहुत कठिनाई से कैसे तो साल गुजरेगा। तो वहां इतने उत्सव होते हैं, उस साल एक साल के लिए भगवान ने कहा कोई फेस्टिवल नहीं, एक ही फेस्टिवल, कर्णोत्सव। कौन सा उत्सव? कानों को जो आनंद दे, बस कर्णोत्सव में ही सारे उत्सव समाये हुए हैं। तो इस प्रकार से जगन्नाथ भी, भगवान जगन्नाथ भी अपने बारे में कृष्ण जब सुनते हैं और बहुत गंभीरता से कथा में एंटर कर जाते हैं, क्या करते हैं, प्रवेश करते कथा में। हम एक घंटा बैठते हैं, कठिनाई से प्रवेश कर पाते हैं, तट पर ही रहते हैं सालों साल। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ ये बहुत ये है, उनका जो प्रेम है अपने भक्तों के लिए सर्वाधिक है। इतना अधिक प्रेम भगवान को है, कृष्ण को, कि जिनके कारण वो जगन्नाथ के रूप में वास्तव में प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा तो आने वाली है, जिसकी तैयारी हर कोई व्यक्ति कर रहा है। चैतन्य महाप्रभु भी रथ यात्रा मनाते थे, और रथ यात्रा सबसे, महाप्रभु ने कई सारे फेस्टिवल मनाए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल महाप्रभु ने मनाया अपने भक्तों के साथ, वो था जगन्नाथ रथ यात्रा। जब रथ यात्रा आती थी तो चैतन्य महाप्रभु पहले से ही सब कुछ ऑर्गेनाइज करने में लगे रहते थे। और ये रथ यात्रा आती थी, हाँ, रथ यात्रा से पहले एक और एक यात्रा आती है। कौन सी यात्रा? स्नान यात्रा, जगन्नाथपुरी में। यहाँ तो हम नहीं करते, प्रभुपाद ने रथ यात्रा इंट्रोड्यूस की कि हर एक जीव को भगवान का दर्शन मिले। ब्रह्मांड पुराण आदि वर्णन करता है कि रथे तु वामनम दृष्ट्वा, रथ के ऊपर वामनम मीन्स कृष्ण को देखना क्या है, पुनर्जन्म न विद्यते। ये जगत से व्यक्ति पलायन करता है, केवल भगवान रथ पर आ रहे हैं और उनके स्वागत हेतु जस्ट खड़ा हो जाता है और देखता है उनको, इतना ही काफी है। तव दर्शनात् मुक्ति, भगवान को देखने मात्र से इस संसार के बहुबंधन से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। तो इसलिए स्नान यात्रा में भगवान तो बहुत सोचते हैं, चलो बहुत गर्मी के दिन है, गर्मी होती है ना, तो स्नान के लिए बैठ जाते हैं, स्नान मंडप में बैठते हैं। और उनका स्नान ऐसे नहीं कि एक कोने में स्नान कर लिया कहा, नहीं, हजारों हजारों लोगों के सामने लाखों करोड़ों लोगों के सामने जगन्नाथ बाहर आते हैं अपनी बहन सुभद्रा बलभद्र के साथ और एक मंडप में बैठते हैं और बैठकर हजारों सुवर्ण के घड़ों से जो चंदन मिश्रित जल है उससे स्नान करते हैं और फिर भगवान इतना स्नान करते पूरे दिन इतना स्नान करते हैं उनको ठंड लग जाती है, सर्दी जुकाम बुखार सब कुछ। ये तो बहाना है, क्या है? क्योंकि वो सोचते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में तो अकेले बैठा रहता हो अपनी बहन सुभद्रा और बलराम के साथ, लेकिन उनका मन लक्ष्मी की ओर है। किसकी ओर? वो अलग एक मंदिर में बैठी रहती है। और अभी वैदिक कल्चर है कि राजा रानी कभी सबके सामने आपस में नहीं मिलते, कैसे मिलते हैं? एकांत में। और ये कल्चर है, इवन पति पत्नी भी ऐसे नहीं कि जहां मर्जी मिले वहां खड़े हैं और लगे पड़े बातें करने में, नहीं, ये वैदिक कल्चर नहीं है। कुछ कुछ मर्यादाएं होती है। आजकल तो मर्यादा कुछ रही नहीं, आजकल तो कठिन है। तो वहां ठंड लग गई जगन्नाथ देव को, तो उन्होंने सोचा अच्छा बहाना है, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया 15 दिन के लिए बीमार। कितने दिन के लिए? हमारे साथ भी होता है ना, थोड़ा सा बुखार आ जाए 9 मंगल आरती, 1 हफ्ता पहले से घोषित होता, घोषणा करते हैं। तो वहां भगवान जगन्नाथ ने घोषणा कर दी कि 15 दिन के लिए मैं बीमार रहूंगा, और फिर वो बहाना उन्होंने बनाया, पंचदश दिन ईश्वर महालक्ष्मी लैया तारा संगे क्रीड़ा कैला निभृते बसिया। पंचदश दिन, 15 दिन लक्ष्मी को एकांत में लेकर बैठ गए। ये कौन? मैंने कह रहा हूं, चैतन्य चरितामृत कह रहा है कृष्णदास कविराज। और फिर भगवान लक्ष्मी देवी के साथ निवास करते हैं। और वैसे भी वहां भक्तगण कहते हैं कि भगवान को बुखार आता है, इवन हमारे एक डिवोटी गए थे, उनको चेक किया था भगवान को 1 साल, जगन्नाथ को हाई फीवर था। लेकिन वो किस फीवर आता है, कब? कई प्रकार के फीवर होते हैं, उसमें से एक 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 बुखार है भक्तों के प्रति, जब प्रेम उमड़ उठता है ना तो शरीर गर्म होने लगता है। तो वैसे ही भक्तों के विरह में भगवान जगन्नाथ का बुखार इतना तीव्र हो जाता है, और उन दिनों में उनको भात नहीं खिलाते। सबसे प्रिय कुछ लगता है भगवान जगन्नाथ को क्या है? भात। इतना भात खाते रहते हैं जिसके कारण सारे उड़िया भक्त क्या खाते हैं? भात ही खाते। तो ऐसे भगवान को फिर उन दिनों केवल जूस पर रखा जाता है और बहुत सारी अलग अलग आयुर्वेदिक मेडिसिन्स वगैरह खिलाई जाती हैं। और फिर एक दिन आता है, 15 दिन बैठते हैं, फिर रथ यात्रा के एक दिन पूर्व भगवान सोचते हैं कि बस अभी मुझे सबको थोड़ा दर्शन देना है अपने मंदिर में। तो वो फेस्टिवल होता है जिसको कहते हैं नेत्रोत्सव। क्या कहते हैं? नेत्रोत्सव। मतलब 15 दिन गैप, बीमार हो गए, अभी बीमारी से थोड़ा ठीक ठाक होके बाहर आ गए, बाहर आके थोड़ा बैठ गए चेयर पर अपने रत्न सिंहासन पर। भगवान का जो अल्टर है वहां, उसको कहते हैं रत्न सिंहासन। जगन्नाथ किसे और सिंहासन में नहीं बैठते, कौन से सिंहासन पर बैठते? रत्न सिंहासन। और वहां बैठते और वहां से फिर दर्शन देते रथ यात्रा के एक दिन पहले। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ क्या होता था? चैतन्य महाप्रभु ये स्नान यात्रा के बाद के जो दिन है वो चैतन्य महाप्रभु को सहन नहीं होते थे। मतलब ऐसे लगता था कि मर जाऊं, मैं क्यों जीवित हूं भगवान जगन्नाथ को देखे बिना। मतलब ये प्रेम का सर्वोत्तम लक्षण है, उच्च। इतना प्रेम भक्त के हृदय में होता है कि कृष्ण को एक क्षण ना देखे तो उसको मृत्यु के समान है। और ये वास्तव में गोपियों का भाव है। हम कितनी बार देखते भगवान को? एक बार देखते तो भी बहुत परेशान रहते हैं, कि सब मुझे देख रहे इसलिए मुझे भगवान को देखना है या प्रणाम करना है। कोपिया ओपनली गालियां देती है ब्रह्मा को, ये कैसा इंजीनियर है, इसको तो आंखें भी बनाने नहीं आती, आंखें बना भी नहीं लेकिन उसमें पलके बना दी, और ये पलके भी बार बार ऊपर नीचे होती है। आपको अच्छा लगता है भागवतम क्लास में जो पलके ऊपर नीचे हो? हमें क्या अच्छा लगता है? पलके नीचे ही रहे। वहां गोपियां कहती है ये पलके ही ना हो आंखों में, सोचो ये ना हो तो प्रॉब्लम ही नहीं है, ये आंखें किसको देखती रहे, ताकती रहेगी निरंतर कृष्ण को, इतने सुंदर है कृष्ण, इतने सुंदर है। प्रभुपाद एक जगह कहते हैं इस संसार की जो स्त्रियां हैं उनकी सुंदरता कुछ भी नहीं है, इस संसार की स्त्रियां स्वर्ग की स्त्रियों के सामने मेंढक की तरह है। किसके जैसे सुंदर है? अब सोचो मेंढक को सुंदर है, किसने कविता लिखी है क्या मेंढक के सौंदर्य के ऊपर? नहीं, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है वो कुछ सौंदर्य का वर्णन जरूर कर सकते हैं। जैसे वर्णन आता है गधे का और ऊंट का, किसका? एक दिन ऊंट की शादी थी, ऊंट की शादी थी और ऊंट ने कहा चलो इनविटेशन बांटने जाता हूं। सबसे पहले इनविटेशन उसने दिया अपने प्यारे मित्र गधे को, गधे को कहा अपनी सुंदर पत्नी के साथ मेरे उसमें आ जाना शादी में, विवाह उत्सव में। तो जब ऊंट शादी के मंडप में खड़ा था तो गधे जी आ गए तैयार होकर सब कुछ लेकर भेंट आदि, और आके ऊंट जब खड़े थे और विवाह का जो वस्त्र होते हैं ना, विवाह क्या कहते हैं उसको, जो भी है शेरवानी आदि धारण करके ऊंट खड़े थे, गधे जी आ गए और उन्होंने कहा अहोरूपम अहोरूपम, क्या बोला? उन्होंने कहा क्या सौंदर्य है, किसका? ऊंट का। क्या सौंदर्य है, क्या सौंदर्य है। ऊंट ने सोचा इतना सा था तब से अभी तक किसी ने मेरे सौंदर्य की प्रशंसा नहीं की, अभी वास्तव में असली स्वरूप इसने पहचान लिया। फिर अभी हमारी प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपके पेट खुजलाई तो आप क्या करोगे, मेरे भी पेट खुजलाओगे। मैंने आपकी प्रशंसा की तो दो चार शब्द आप भी मेरे प्रशंसा के बोलोगे, ये भौतिक समस्या है। तो यहां इनको लगा कि बस अभी कुछ मुझे भी तो प्रशंसा करनी चाहिए। तो ऊंट ने कहा अहो ध्वनि अहो ध्वनि, क्या कहा? उन्होंने कहा क्या मधुर गाते हैं आप, किसको? तो फिर सोचो उस विवाह मंडप में किसको गाने का मौका मिला होगा। तो इस प्रकार से तो लेकिन भगवान का जो सौंदर्य है उसकी कोई तुलना नहीं है। प्रभुपाद का इस संसार के स्त्रियों की सुंदरता मेंढक की तरह है, और इसलिए वो कहते हैं श्रेषु रंभा, स्त्रियों में कोई सुंदर है तो वो रंभा है स्वर्ग की। तो जैसे तो स्वर्ग की स्त्रियों की तुलना फिर प्रभुपाद कहते हैं वैकुंठ की स्त्रियां, उनकी क्या तुलना की जाए, स्वर्ग की स्त्रियां तो उनके सामने उनके नाखून के अग्र भाग के समान भी उनकी सौंदर्यता नहीं है। फिर वैकुंठ की जो स्त्रियां हैं उनसे करोड़ करोड़ गुना गोलक वृंदावन की गोपिकाएं हैं, जिनके सौंदर्य की कोई तुलना नहीं की जा सकती, अमाप सौंदर्य है। लेकिन ये सारी स्त्रियां अपनी गर्दन ऐसे ऊपर करके उत्कंठ उत्कंठा मीन्स क्या, उत्कंठा कहते हैं ना, उत्कंठा। सुनना कैसे चाहिए, उत्कंठा के साथ कृष्ण कथा को, मतलब कंठों का ऐसे ऊपर करके सुनना चाहिए। ऐसे नहीं कि सुखदेव गोस्वामी ऐसे लेक्चर दे रहे हैं और परीक्षित महाराज हाँ बोलिए ऐसे नहीं, उत्कंठा से सुनते हैं हाँ, तो फिर परिवर्तन शुरू हो जाता है। तो वहां ये सारे ब्रज की जो स्त्रियां हैं, गोपिकाएं हैं, जो पृथ्वी स्वर्ग वैकुंठ आदि से सबसे सौंदर्यमान है, वो भी अपनी गर्दन ऐसी ऊंची करके पल के बिना झुके आंखों को ऐसा एकटक एक क्या कहते हैं नील युवक, नीलमणि, कृष्ण का एक नाम क्या है नीलमणि, नील युवक को देख रही है जिनके हाथ पे बांसुरी है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण का सौंदर्य है। तो चैतन्य महाप्रभु को रहा नहीं जाता था, 15 दिन का विरह से वो जल उठते थे, और फिर जिस दिन भगवान दर्शन देने वाले होते हैं नेत्रोत्सव में, तो चैतन्य महाप्रभु दौड़ पड़ते थे और जाकर टेम्पल के बिल्कुल अल्टर के पास जाकर खड़े होते थे सुबह सुबह, और शाम को बाहर निकलते थे। 12-12 घंटे भगवान के सामने खड़े हैं और भगवान के सौंदर्य को पी रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पी रहे हैं अपनी आंखों से, फिर भी वो संतुष्ट नहीं हो रहे कि और अधिक, यही तो भगवान से संबंधित वस्तुओं की खासियत है। उनका नाम, उनके गुण, उनके रूप, उनकी लीलाएं, भक्त और अधिक चाहता है और हाँ। तो इस प्रकार से फिर दूसरा दिन जब होता है तो उस दिन भगवान फिर लक्ष्मी से परमिशन लेते हैं, तहारे सम्मति लया भक्त सुख दीते रथे चढ़ी बाई रहैला विहार करिते। फिर लक्ष्मी का सम्मति लेते परमिशन, तहार सम्मति लया भक्त सुख दीते। रथ यात्रा का एक ही उद्देश्य है, भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान रथ के ऊपर चढ़ते हैं। रथे चढ़े बाहर हैला विहार करते, फिर घूमने के लिए निकलते हैं। तो इस प्रकार से भगवान निकलते हैं रथ यात्रा के लिए, और रथ यात्रा वास्तव में भगवान कुरुक्षेत्र से कहा जा रहे हैं वृंदावन, भगवान को वृंदावन ले जाना जगन्नाथपुरी कुरुक्षेत्र से। कृष्ण लैया ब्रजे जाबो ए भावांतरे, कृष्णदास कविराज कहते कि कृष्ण को लेकर मैं ब्रज जा रहा हूं या जा रहे हूं, इस ए भाव अंदर होता है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु भी रथ यात्रा में कीर्तन करते थे, कई ग्रुप्स बनाकर विशेष रूप से अलग अलग जो पार्टियां हैं वो बनाते थे चैतन्य महाप्रभु। 7 ग्रुप बनाते थे जिसमें अलग अलग 24 गायक हुआ करते थे, 8 मृदंगास हुआ करते थे, 4 डांसर्स हुआ करते थे। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कीर्तन शुरू होने से पहले ही हरि हरि की ध्वनि करते थे अपने भक्तों के संग में, और जगन्नाथ देव के सामने हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करते थे रथ शुरू होने से पहले। दंडवत करे प्रभु जुड़े दुई हाथ ऊर्ध्व मुखे स्तुति करे देखी जगन्नाथ। महाप्रभु रथ यात्रा शुरू होने से पहले दंडवत करते थे भगवान को, गिर जाते थे रथ यात्रा के सामने। जैसे प्रभुपाद भी एक बार प्रभुपाद रथ यात्रा के लिए आए तो वहां गीला था नीचे, पानी और क्या क्या पड़ा था। प्रभुपाद ने सोचा नहीं, आकर भगवान जगन्नाथ को देखते प्रभुपाद ने क्या किया, उसी में प्रणाम कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु प्रणाम दंडवत आदि करके फिर खड़े हो जाते थे, हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करते थे, और विशेष रूप से 3 श्लोक महाप्रभु बोलते थे। एक था नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, और दूसरा था जयति जयति देवो देवकी नंदनोसो जयति जयति कृष्णो वृष्णिवंशः प्रदीपा जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगो जयति जयति पृथ्वी भार नाशो मुकुंदा। तो और फिर एक श्लोक बोलते थे नाहम विप्रो नच नरपति, हाँ, और उसमें कहते थे गोपीर भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदास। इस भावना को लेकर महाप्रभु रथ यात्रा में भाग लेते थे कि वास्तव में गोपियों के जो भर्ता कृष्ण है उनके परम सेवकों के सेवकों का मैं सेवक हूं। इस मूड को हृदय में धारण करके रथ यात्रा में भाग लेते थे और महाप्रभु इतना उदंड नृत्य करते थे। कृष्णदास कविराज कहते हैं भूमि में कंपन आ जाता था, चैतन्य महाप्रभु नाचते थे भूमि में कंपन आता था और तीन सर्कल्स चैतन्य महाप्रभु के इर्द गिर्द होते थे और हर कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के नृत्य को देखना चाहता था। बल्कि भगवान जगन्नाथ रुक जाते थे रथ, क्या रे चैतन्य महाप्रभु नाच रहे हैं, लोग भगवान रुकते थे क्या देखने के लिए, नृत्य को देखने के लिए। तो भगवान हर चीज के लिए रुक सकते हैं यदि वो कार्य उनके प्रीति के लिए हो, भगवान को प्रसन्नता के लिए। हम नाचते हैं तो पहले देखते कि कितने लोग मुझे देख रहे हैं, प्रणाम करते तो सोचते हैं कि भगवान के बारे में नहीं, टेम्पल में कौन मुझे देख रहा है कि मेरा प्रणाम कितना अच्छा है। तो नृत्य हम करते हैं तो भगवान वास्तव में हमारे हर भक्तिमय कार्य को पर्सनली देखते हैं और इसलिए हमें हर कार्य इस भावना से करना चाहिए कि मेरे हर कार्य को, मेरा जप, मेरा अध्ययन, मेरी सेवा, हर चीज को, मेरा प्रसाद ग्रहण करना, सब चीजों को कौन देख रहा है, कृष्ण देख रहे हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु नाचते थे तो राजा प्रताप रुद्र भी अपने भक्तों के साथ देखते, अपने पार्षदों के साथ नृत्य देखते थे। उस रथ यात्रा में राजा प्रताप रुद्र तीन जो घेरा हुए थे, राउंड थे, उसके पीछे खड़े होकर देख रहे थे अपने सेवक हरिचंदन के साथ। और हरिचंदन के सामने और एक भक्त महाप्रभु का नृत्य देख रहे थे, श्रीवास ठाकुर, और राजा के बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं, राजा के आगे, राजा को दिखाई नहीं दे रहा था। तो जो हरिचंदन नाम का सेवक था राजा का, श्रीवास ठाकुर को कहा प्रभु जी थोड़ा सा साइड हो जाइए, हरि बोल, हाँ साइड। कहा ये कौन है, एक बार हो गया, दो बार हो गया, फिर कलयुग में तीन बार हरे नाम, जब तीसरी बार किया श्रीवास ठाकुर को रहा नहीं गया, मेरे आनंद में बाधा, पीछे देखा नहीं उन्होंने कौन है, किसको भेज दिया पीछे, हाथ को जोर ऐसे मुड़ गए, एक जोर से थप्पड़ लगाई, राजा का पर्सनल सेवक यहां। अभी वो हरिचंदन गुस्सा हो गए, राजा वो सोचा भी इनकी पिटाई करता हूं। राजा ने कहा आज वास्तव में आपके ऊपर महान कृपा हो गई है, क्या हो गई है कृपा, भक्तों का स्पर्श होना ये बहुत बड़ी कृपा है, और वो किस चीज से, हथेली से इतना जोर से मारा। तो राजा ने कहा आपके ऊपर विशेष कृपा हुई है। और चैतन्य महाप्रभु नाचते थे तो उनसे बोला नहीं जाता था, इतने भावावेश में आते थे। महाप्रभु कहते थे जज गग, क्या कहते थे, जगन्नाथ मुश्किल से निकल पाता था, इतना प्रेम, रो रहे थे और उनकी आंखों से रथ यात्रा में आंसू की पिचकरियां निकलती थी, हमारे आंसू यहां आते उनके आंसू टक सीधा, कैसे निकलते थे सीधा, भावावेश में फेन निकलता था मुख से, और ये भक्ति सेवा थी, फेन को लेना महाप्रसादे गोविंद, फेन को खा लेना पी जाना। तो इस प्रकार से महाप्रभु नेत्र धारा और ऐसे भगवान जगन्नाथ को देखकर उन्मत्त होकर एक एक पद को गाया करते थे, अपने हाथ ऊंचे करके भगवान जगन्नाथ को देखकर महाप्रभु रोया करते थे, रथ के सामने गाते थे और कहते थे सेई तो परारनाथ पायेनु जहां लागे मदन दहन झुरी गेनु, वो कहते थे सहित प्राण नाथ पाए। आज वास्तव में मैंने अपने प्राण के नाथ को प्राप्त कर लिया है, जिनके लिए मेरा हृदय क्या हो रहा था, इतने दिनों तक जल रहा था। और वास्तव में ये शब्द किसके हैं, श्रीमती राधा रानी के, जब वो कुरुक्षेत्र में मिली थी। भगवान जब वहां गए थे सूर्य ग्रहण के लिए, और राजवेश में थे, हस्तिनापुर से कई सारे राजा लोग गए थे वहां, और भगवान को मिलने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि राजागण आदि उनके मंडप में आए थे। भगवान वहां बैठे थे तो उसी समय एक व्यक्ति आता है और वो बलराम के कान में कहता है, क्या कहता है कि वृंदावन के निवासी आए हैं नंद महाराज आदि। फिर कृष्ण को पता चलता है, कृष्ण कहते हैं मीटिंग कैंसल, वहां से दौड़ने लगते भगवान। और जैसे वो सुनते हैं कि नंद महाराज यशोदा आदि आए हैं, कृष्ण और बलराम दौड़ रहे हैं उनको देखने के लिए, बल्कि भगवान ने उनको इनवाइट नहीं किया था कुरुक्षेत्र के लिए, सबको उन्होंने इनवाइट किया लेकिन वृंदावन वासियों को बताया नहीं कि मैं कुरुक्षेत्र जा रहा हूं, आप भी आओ। लेकिन उनका हृदय कृष्ण की ओर इतना आकृष्ट था कि वृंदावन वासी बैलगाड़ियों में क्या लेकर निकले होंगे, दूध दही मक्खन गोबर के कंडे, ताकि कुकिंग करेंगे वहां अपने हाथ से कुकिंग करके, ब्रज के गोबर से बना हुआ प्रसाद, तो ये सब लेके पहुंच गए थे वहां बैलगाड़ियों में। और फिर जैसे भगवान ने यशोदा नंद को देखा, उनका आलिंगन किया, कृष्ण यशोदा माता की गोद में बैठ गए इतने लंबे 100 साल के बाद, और वहां माता यशोदा के स्तनों से दूध बह रहा था, आंखों से इतने आंसू बह रहे थे कि कृष्ण का अभिषेक हो गया, क्योंकि वहां तो ड्राई हो गया था ब्रज में, आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे थे। फिर इतना सब हो रहा था तो देवकी देख रही थी ये सब, क्या देख रही थी, कौन, देवकी। देवकी ने देखा, अरे ये मेरा पुत्र है, ये यशोदा का इतना क्यों प्रेम, यशोदा के प्रति इतना प्रेम क्यों। तो देवकी के हृदय में आया विचार कि मैं बोलती हूं कि आपका पुत्र नहीं है, ये किसका पुत्र है, मेरा है। लेकिन उनके पास साहस नहीं हुआ, कृष्ण का इतना उन्नत प्रेम ब्रजवासियों के प्रति देखा। तो ये जगन्नाथ वास्तव में ये रूप है जो उनका ब्रजवासियों के प्रेम को वास्तव में प्रकट करता है। ब्रजवासियों के प्रति कितना अधिक प्रेम है उसकी पराकाष्ठा एक प्रकार से जगन्नाथ का रूप है। तो फिर रोहिणी ने देखा कि अभी सीनियर्स को मिल गए, अभी इनसे भी मिलना चाहिए, गोपियों से भी मिलना चाहिए। जहां राधा रानी आदि सारी गोपियां एक कोने में खड़े थी दूर, अभी सबके सामने तो सरलता से नहीं मिल सकती। रोहिणी ने कहा आप जाइए, अभी नंद यशोदा इन सबको भेज दिया कुछ बहाना बनाकर। फिर गोपियां कृष्ण के पास आती है और रो पड़ती है और कृष्ण को कहती है कि आपके माता पिता वसुदेव देव के नहीं है, आपके माता पिता कौन है, नंद यशोदा। और उस समय गोपियां राधा रानी वास्तव में कृष्ण को बांसुरी पकड़ाती है, क्योंकि ब्रज को छोड़ा तो बांसुरी लेकर निकले नहीं, बांसुरी पकड़ाती है, मोर पंख लगाती है। और बहुत सारा वर्णन है, समय का अभाव है। तो फिर भगवान को देख रही थी, ये सारे राजवेश में सज धज रहे हैं, सुंदर नहीं लग रहा था। तो गोपियों ने भगवान को वहां वेश पहनाया, कौन सा वेश, गोप वेश, जो कृष्ण का ओरिजिनल वेश है गोप वेश। वैसे ही रोज रात को जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ सोने से पहले वेश पहनते, जिसको कहते हैं बड़ा श्रृंगार वेश। और फिर फाइनली गोपिकाएं उनको रथ पर बिठाती हैं और फिर रथ को खींचती है, कौन से स्थान की ओर, वृंदावन की ओर। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ रथ यात्रा बढ़ाते थे, और कभी कभी जगन्नाथ रुक जाता था, रथ चलता नहीं था, चैतन्य महाप्रभु रथ के पीछे जाते थे, हाथी घोड़े सब खींच खींच के थक जाते थे, महाप्रभु पीछे जाते थे और अपना माथा रथ को ऐसे लगाते थे, और जैसे लगाते थे धकेल देते थे रथ, आवाज गड़गड़ गड़गड़ आवाज करके आगे दौड़ पड़ता था। और फिर भगवान जगन्नाथ कई बार रुक जाते थे, देखते थे चैतन्य महाप्रभु आगे नहीं है, महाप्रभु पीछे है, तो तब तक वेट करते थे जब तक वो आगे ना आए। मतलब भगवान जगन्नाथ राधा रानी को देखना चाहते हैं आगे, मीन्स अपने भक्तों को आगे देखना चाहते हैं। ऐसे लेके रथ चला गया और भक्त लोग पीछे अब प्रसाद इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। हाँ, हमें कहाँ होना चाहिए, हमेशा सामने, भगवान के रथ के सामने। तो ऐसे भगवान के रथ यात्रा आदि भाग लेना, दर्शन करना, सर्व करना, नाचना, कीर्तन करना, प्रसाद पाना, ये सब भगवान की प्रसन्नता हेतु होना चाहिए। हमारा सौभाग्य है प्रभुपाद की कृपा से ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि भगवान प्रकट है, लेकिन विशेष रूप से फरीदाबाद में बलभद्रा और सुभद्रा देवी के साथ उनका आगमन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के, श्रील प्रभुपाद के, सिताय गौर प्रेमानंदे, रथयात्रा महामहोत्सव के।